मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 8 अक्टूबर 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का जिन्होंने इसी महीने कुछ दिनों बाद होने वाली क्लासेस में दाखिला लिया है। इन मित्र का नाम है शैलेश कुमार सोनी, आपका गांव है धनौती मत, जिला सिवान, बिहार। तो शैलेश, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हालांकि हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है डिस्कशन के लिए, भारत रूस संबंध, लेकिन भारत और रूस के संबंधों की पृष्ठभूमि के बारे में मैं कल आप लोगों से बात करूंगा, बशर्ते कि कोई बहुत दूसरी महत्वपूर्ण घटना सामने न आ जाए, लेकिन यह निश्चित है कि इस विषय पर हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इससे पहले आइए हम कुछ थोड़ी सी दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं, हालांकि वो घटनाएं इतनी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी देख लेना ठीक होगा। फ्रेंड्स, एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है न्यूज में, आपने सुनी होगी कि भारत आगामी एक दशक में जो दुनिया है उसके विकास का एक प्रमुख प्रेरक होगा। देखिए, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है प्रमुख प्रेरक होगा, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है कि भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति होगा। यहां थोड़े सा अंतर को समझिएगा और इस तरह के अंतर को समझना सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग इस पर केवल अपने ढंग से विचार कीजिए कि क्या अंतर है कि भारत खुद में एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा और दूसरा वह विकास का प्रमुख प्रेरक बनेगा, राइट? आपने न्यूज में यह भी सुना कि हमारे राष्ट्रपति जी ताजिकिस्तान की यात्रा पर गए हुए हैं। हालांकि ताजिकिस्तान देखिए एक छोटा सा देश है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जब भी ऐसे अवसर आए आपको हमेशा नक्शे में उस स्थान को देखने की कोशिश करनी चाहिए। उसका कारण यह है मित्रों कि इस तरह से साल भर में धीरे धीरे आप पूरी दुनिया का नक्शा आपके दिमाग में आ जाएगा, आप समझने लगेंगे कि कौन सा देश कहां पर है, क्योंकि जब आप नक्शे में ढूंढते हैं देखिए अचानक तो उंगली रख नहीं देते हैं, आपको ढूंढना पड़ता है कि ये भाई ये कहां पर होगा। थोड़ी सी जानकारी है ताजिकिस्तान रशिया में होगा, एशिया महाद्वीप में होगा, यूरोप महाद्वीप में होगा, बस इतनी जानकारी आपकी है। फिर आप वहां लोकेट करके और दूसरे भी देशों को आसपास देखने की कोशिश करते हैं। ये ठीक उसी तरह से है कि आप किसी कॉलोनी में गए हुए हैं, आपको उसका घर नहीं मालूम है, केवल पता मालूम है और लोगों से पूछ पूछ करके आप उस घर तक पहुंचते हैं, तो इसी बहाने आप कॉलोनी के दूसरे घरों का भी पता लगा लेते हैं और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आप कि एक तरह से कह लीजिए कैपेसिटी को बिल्डअप करेंगे और इससे जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें आपको मदद मिलेगी और साथ ही साथ जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें भी मदद मिलेगी। तो ताजिकिस्तान देखिए, आप भारत के उत्तर के बिल्कुल ऊपर चले जाइए, ताजिकिस्तान मिलेगा, लेकिन याद रखिए कि भारत की सीमा नहीं है, अफगानिस्तान की सीमा है। वहां देखने पर कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यार भारत की सीमा भी ताजिकिस्तान से मिलती है, लेकिन एक बहुत ही थीन बहुत ही पतली लाइन है जो बेसिकली अफगानिस्तान की है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो भारत के इतना नजदीक हो कि अफगानिस्तान से केवल पतली लाइन से विभाजित है, तो वो भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि जो ताजिकिस्तान है, याद रखिए उसकी सीमा चाइना से भी मिलती है, तो ये सब का पता लगेगा आपको, तब पता लगेगा जब आप नक्शे में ढूंढने की थोड़ी तकलीफ उठाएंगे। चाइना भी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। तो ये केवल दो उदाहरण से आप क्या अब नहीं समझ पा रहे होंगे कि ताजिकिस्तान में जो हमारे राष्ट्रपति जी गए हैं तो उसकी राष्ट्रपति जी की हमारी यह यात्रा भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण होगी, अफगानिस्तान के संदर्भ में भी और इधर चीन के संदर्भ में भी। और अफगानिस्तान की सीमा किससे मिलती है, आपको लगेगा पाकिस्तान से मिलती है, और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो केवल नक्शे में लोकेट कर लेने से आप देखिए कि आपकी जो कैपेसिटी है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। एक बात और है, इस बार अगर आप मेंस के पेपर उठा करके देखें तो उसके सेकेंड पेपर में एक एग्रीमेंट की बात कही गई है, असगाबाद एग्रीमेंट, हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। असगाबाद एग्रीमेंट में ताजिकिस्तान नहीं है, राइट। लेकिन मध्य एशिया के संदर्भ में यह बात पूछी गई है, यह मध्य एशिया का ही देश है, तब फिर आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा मध्य एशिया में ये है, तो ये फिर से आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर देगा, बिल्डअप कर देगा। तो दोस्तों सिविल सर्विस की तैयारी कैसे की जाती है उस संदर्भ में मैंने ये बात थोड़ी सी आपको बताई है। अदरवाइज उस तरह से अगर आप सोच करके देखें कि कोई इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बनता है तो अभी तो स्थिति नहीं लग रही है, आगे जाकर के हो सकता है कि कोई ऐसी घटना हो या कोई ऐसा एग्रीमेंट हो दोनों देशों के बीच में कि ये महत्वपूर्ण भी बन जाए, आप निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते। इसके बाद एक जो छोटी सी खबर है मित्रों वो थी खासकर जम्मू कश्मीर में जो स्थानीय चुनाव हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि स्थानीय चुनाव का कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने बायकॉट भी किया है, सरकार कोशिश में मतलब शरद सरकार ने अपील की कि वो चुनाव में भाग लें, अब देखते हैं कि आगे क्या स्थितियां बनती है, क्योंकि खासकर पाकिस्तान के इंटरफेरेंस को देखते हुए, उसके आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए जो जम्मू कश्मीर के जो चुनाव हैं, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हो, स्टेट असेंबली के चुनाव हो या संसद के चुनाव हो, हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए और कम से कम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उसमें पूरी तरह से भाग लें। मित्रों ये कुछ न्यूज के बारे में थे। अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर। मुख्य विषय का विषय मैंने इससे पहले आपको नहीं बताया था, लेकिन अब मैं बता देता हूं कि मुख्य विषय के तहत आज हम लोग जो मुख्य परीक्षा 2018 के अभी जो एग्जाम हुए हैं उसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा, क्योंकि वैसे भी मंडे का दिन हम लोगों ने इस बात के लिए रखा है कि तैयारी कैसे की जाए, इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस आप लोगों को मैं दे सकूं। फ्रेंड्स पहली बात, क्योंकि इससे संबंधित मेरे पास मेल भी आते हैं, वो ये कि अगर आपने सोच लिया है कि आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बैठना है, फिर चाहे आप अभी 10th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, या आपको 2021 के एग्जामिनेशन में बैठना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मान करके चलिए कि इस बार के जो मेंस के पेपर हैं वो आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने महत्वपूर्ण वे उस समय होंगे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे तार्किक कारण है। स्टूडेंट सोचता है कि मुझे तो अभी 3 साल के बाद परीक्षा देनी है तो ये पेपर मेरे किस काम के हैं, उस समय देखेंगे। मित्रों ऐसा सोचकर आप अपने ही प्रति अन्याय कर रहे हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि आप सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के साइंटिफिक तरीके को समझ नहीं रहे हैं। देखिए जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो तैयारी होती है इसे मैं एक परतदार चट्टान के स्वरूप के रूप में देखता हूं, जिसे आप सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, 10th तक तो हम सब जनरल पढ़ते ही है और उसमें चट्टानों के प्रकार हम सबने पढ़े हैं। परदार चट्टान वो होती है जो धीरे धीरे समुद्र में बहा करके कुछ चीजें ले जाती है, उनको एक जगह जमा कर देती है, फिर दूसरी फिर सब बह करके जाती है। तो एक ऐसी चट्टान जो परतों से बनी हुई है, परतों 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 से जिसका निर्माण हुआ है। दोस्तों सिविल सर्विस में जो नॉलेज का जो फॉर्मेट होता है वो परतदार चट्टानों की तरह होता है जो परतों परतों से बनना चाहिए, मतलब ये गारंटी सुदा तैयारी होती है। मैं ये नहीं कहता कि एकमात्र यही तरीका होता है, मतलब बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2 साल पहले सोचा कि मुझे सिविल सर्विस में बैठना है, इसके बाद उन्होंने तैयारी शुरू की और फिर वो सेलेक्ट भी हुए और बहुत अच्छी रैंकिंग के साथ सेलेक्ट हुए। तो वहां तो परतदार चट्टान उस रूप में हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि हमारे दिमाग में 2 साल का पीरियड है, लेकिन मानकर चलिए कि उनकी जो पिछली पढ़ाई थी अनजाने में ही, उन्होंने फैसला नहीं किया था लेकिन अनजाने में ही कहीं न कहीं वो परतदार तरीके से चल रही थी। वो अखबार पढ़ रहे होंगे, न्यूज सुन रहे होंगे, इस तरह के डिस्कशन में भाग ले रहे होंगे, कार्यक्रमों में जा रहे होंगे, दूसरी तरह की किताबें पढ़ रहे होंगे और सब वो अनजाने में कर रहे थे। सिविल सर्विस उनका उद्देश्य नहीं था, वो 2 साल पहले उन्होंने डिसाइड किया और वो सेलेक्ट हो गए। तो आप सौभाग्यशाली हैं यदि आपने बहुत पहले ही इस बात का फैसला कर लिया है कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है। तो आप सिविल सर्वेंट की तैयारी के लिए, ये नहीं कि आपको पूरी तरह से अब इसी में लग करके तैयारी करना है, नो डाउट उसका वक्त अभी नहीं आया है, बिल्कुल नहीं आया है, उसका वक्त बाद में आएगा। लेकिन उसके जो लक्षण हैं, उसके जो स्वरूप हैं, तैयारी करने की जो छोटी छोटी चीजें हैं उनसे तो आपको जुड़ ही जाना चाहिए। जैसे न्यूज सुनना शुरू कर दीजिए, अखबार पढ़ना शुरू कर दीजिए, भले ही समझ में ना आए कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर दीजिए। और अब जिस जो आज का मेरा विषय है कि मुख्य परीक्षा के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको पढ़ना तो शुरू कर ही देना चाहिए, चाहे वो मुख्य परीक्षा के हों चाहे वो प्रीलिम्स के हों। इससे होगा क्या, देखिए इससे अनजाने में आपको रास्ता दिखाई देने लगेगा कि अच्छा ये सिविल सर्विस है, अच्छा इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और फिर जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे वो आपके सिलेबस का ही टॉपिक हो, चाहे आप अखबार में कुछ भी पढ़ेंगे या डिस्कशन में भाग लेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे 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 ना ये जो सिविल सर्विस की तैयारी करने का जो निर्गुण स्वरूप है, जिसका कोई आपको रूप रंग दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल, वो स्वरूप सगुण में परिवर्तित होने लगेगा, वो एक फॉर्म में आने लगेगा, उसका रूप बनने लगेगा। और रूप बन गया तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, यानी कि जाने अनजाने में आपकी तैयारी को एक रास्ता मिल जाएगा, जो बहुत बड़ी बात है, जो बहुत बड़ी बात है। देखिए टीना डॉबी जी ने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में न केवल क्वालिफाई किया सिविल सर्विस बल्कि टॉप किया, तो आप उनका पढ़ करके देखिए, उन्होंने फैसला कर लिया था कि 10वीं के बाद ही मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, एग्जामिनेशन की तैयारी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसी समय से किताबें मंगा ली, सब सिविल सर्विस के नोट्स मंगा लिए और पढ़ने शुरू कर दिए, क्योंकि वो एज ऐसी नहीं होती है कि आप उन चीजों को उस नजरिए से देख सकें, क्योंकि माइंड में उतनी मेच्योरिटी नहीं है। लेकिन उनको रास्ता दिखाई देने लगा था, चीजें समझ में आने लगी थी, उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया था, उन गाइडलाइंस को फॉलो करने लगी थी, धीरे धीरे ही सही आगे जाकर के उन्होंने कमाल करके दिखाया, इतनी कम उम्र में फर्स्ट अटेम्प्ट में, और वो भी टॉप कर जाना छोटी मोटी बात तो नहीं है। तो इतिहास उन्होंने एक प्रकार से ऐसा करके रचा। तो आप इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। तो पहली बात जो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, चाहे आप कभी भी बैठ रहे हों, प्लीज मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए और पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कई कई बार पढ़िए, और बकायदे इसने अपने रिकॉर्ड में रख लीजिए, एक फाइल बना लीजिए जिसमें हर साल के पेपर आपके होने चाहिए। अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा के बारे में ऐसा नहीं किया हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्रारंभिक परीक्षा के बारे में भी ऐसा ही कीजिए, उसके लिए भी इसकी उतनी ही जरूरत है। दोस्तों मैंने सोचा था कि आज मैं आप सबसे जो पेपर की समीक्षा है कह लीजिए, या कि पेपर किस तरीके का था, कठिन था, सरल था, उसको पारिभाषिक रूप में समझाऊं, लेकिन समय इसी में खत्म हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, इस पर तो बात हम करेंगे ही अगली बार ही सही, लेकिन जो बात की जाए, चूंकि वो बहुत ही मुकम्मल तरीके से की जाए, पूरी तरह से की जाए, तो आज मुझे अब इस मुख्य विषय को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय को मैं यहीं समाप्त करता हूं। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सभी को उपलब्ध करा रहा हूं, अपने अपने हिसाब से आप लोग देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उसमें एक मेल मेरे पास आया है जिसमें खासकर भारत और रूस के संबंध में एक वाक्य कहा गया था डिस्कशन में कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट होना चाहिए। तो किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट क्या होता है। देखिए पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट का मतलब है कि लोगों के बीच में आपसी संबंध बनने चाहिए। एक तो राष्ट्र के बीच में बन रहे हैं, है ना, हमारे राष्ट्रपति जी रूस के राष्ट्रपति के से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो समय था 1975-80 के आसपास, उसमें पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट थे। रशिया के लोगों को हम लोग पसंद करते थे, वो हम लोगों को पसंद करते थे, हमारी वहां खूब फिल्में दिखाई जाती थी। आपको मालूम है राज कपूर तो वहां के हमारे से ज्यादा लोकप्रिय एक्टर हैं, वहां के लोग आते थे, हम जाते थे, कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, लिटरेरी एक्टिविटीज होती थी, यहां के लोग ग्रुप में जाते थे, वहां के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, इस तरह के खूब कार्यक्रम होते थे। तो इसे कहा जाता है पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, मतलब केवल पॉलिटिकल लेवल पर ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, कला, साहित्य, इतिहास के स्तर पर भी। जैसे भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में भी जब बात होती है तो यह है कि भाई पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ाया जाए, तो मित्रों ही से कहा जाता है पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। तो सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को फिर से धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं अभयानंद, इकरमुद्दीन रंगरेज, नितिन कुमार अमरोहा उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार चंडीगढ़ से, रविंद्र कुमरावत वरुण मध्य प्रदेश से। रविंद्र आपको धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने ईमेल लिख करके जो हमारे अक्टूबर बैच में आने वाले स्टूडेंट हैं उनके प्रति शुभकामनाएं प्रेषित की हैं, और साथ ही साथ उनको कुछ अच्छी सलाहें भी दी हैं। आपके इन भावनाओं का एकेडमी की पूरी टीम की ओर से मैं विधिवत तरीके से सम्मान करता हूं। विजय रंजन देवघर झारखंड से, मनोज अहिरवार शाहगढ़ मध्य प्रदेश से, सुरभि कुमारी मोतिहारी बिहार से, शाहबाज हुसैन, जावेद अख्तर यमुनानगर हरियाणा से, और मिनुल कुशवाहा, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।